भक्त्या विहीनाय परागवच्छे चित्ताश्च कामादिकरं गमद्भिः कृपामयीं त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणा अङ्गश्यामलिं छटाभिरमितो मन्दीकृतेन्दीवरं जाग्रं जागुदरोदिसाङ्गतं पटं वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलशब्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्याय तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना विज्ञाय राधे त्वं नर्माम च वरं देव मोक्षं न मोक्षावदेव न चन्नं क्रीडहं वरेषादीय इदं ते बपुर्नाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्यापि आस्ताम। গতকাল আমরা এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছি, তাতে আমরা মোক্ষের অপেক্ষা মোক্ষাবলি বৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠের অপেক্ষা দ্বারকাধীশ এম মথুরা, দ্বারকা এম মথুরা এবং তদপেক্ষাও ব্রজেতে কৃষ্ণ সেবার বৈশিষ্ট্য আমরা প্রদর্শন করেছি, যেরকম হতে তার ব্যাখ্যাতে সেটা সনাতন গোস্বামী করেছে। তিনি বলছেন যে এই সব কিছু চাই না, এমনকি শ্রবণ কীর্তন স্মরণের যে ফল ও সবগুলি আমি চাই, এই সম্বন্ধে আমরা বিশদভাবে একটু বর্ণন করেছি। এখন তিনি বলছেন সদা মে মনস্যা অবিরাস্তাম কেমন নেই, অন্তিম লাইনেতে তুমি বলছো সদা মে, তুমি তোমার এই বাল গোপাল রূপ যশোদা ভয়েতে কম্পিত চোখেতে অশ্রু প্রবাহিত এবং ভয়েতে তুমি কাঁপছ, ভয় সে আপ কাঁপ রহে হ্যাঁ আর যশোদা কে ভয় সে ভীত হ্যাঁ, এই আপকা যে গোপাল রূপ जो मैया के बात्सल्य रस से सरागोर हैं, उससे मुक्त हैं, यही बाल गोपाल रूप हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में आप सब समय स्फूर्ति हो, हमारे मन में हमारे चित्त में आविर्भूत हो, ये मैं चाहता हूं। यस्टरडे आई एक्सप्लेन अबाउट मुक्ति एंड आफ्टर दैट वैकुंठ, आफ्टर दैट शरणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं एंड आफ्टर दैट दिस बाल गोपाल रूप इन ब्रज, ग्रेजुअली अप एंड अप। नाउ ही इज टेलिंग सदा मे मनस्या विरास्ताम ओ बाल गोपाल कृष्ण, the Krishna of Yashoda, controlled by Yashoda, fearing from Yashoda, trembling also, weeping also, that very face, beautiful sweet face, should be manifested in my heart, in my mind, in my chitta. यहाँ पर ये जो बतला रहे हैं এখানে যে তিনি বলছেন আমার মনেতে এই রূপটা আবির্ভূত হোক, এটি সনাতন গোস্বামী বলছেন যে বৃহৎ ভগবতামৃতেতে সনাতন গোস্বামী তাহার টিকাতে যা বলেছেন যে পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ আমাদেরকে বারবার প্রতিদিন 10 বার করে নিষেধ করছেন যে চক্ষু দ্বারা দেখবার চেষ্টা করব না, ভগবানের রূপ অপ্রাকৃত, অতএব এই জন্য দেখবার চেষ্টা করো না, না তো গোলমাল হয়ে যাবে, অন্যটাকে অন্য রূপে বুঝেই। সনাতন গোস্বামী বৃহৎ ভগবতামী যা বর্ণন করেছেন ঠিক পিপলায়ন ঋষি যা বলছেন ওই সব কথাতে বিক্রম মহারাজ একদম খুব বহু অক্ষরশ তিনি বারবার আমাদেরকে বলছেন, কিন্তু কেন আমরা শুনতে পাচ্ছি না পিপলায়ন ঋষির কথা? কত সুন্দরভাবে বলছেন, গোপ কুমার বলছেন যে প্রভু আমি তাকে চোখের দ্বারা দর্শন করতে চাই, আমি তপলোকেতে থাকব না। পিপলায়ন ঋষি বলছে যে কেন থাকবে না, তো এখানে তো চোখের দ্বারা তার সঙ্গে দর্শন হয় না, কথা বলা হয় না, আমি এখানে থাকতে চাই। পিপলায়ন হচ্ছেন নবযোগেন্দ্রের মধ্যে একজন অন্যতম, কিন্তু সে তুমি এই নবযোগেন্দ্রের কবি হবি অন্তরিক্ষ পিপলায়ন প্রবুদ্ধ ইত্যাদি এই তপলোক ছড়ে দিয়ে তুমি কোথায় যাবে রে, এই তপলোক থেকে আর কোন শ্রেষ্ঠ লোক আছে? তুমি মনে করছো যে চোখে দেখব, তার সঙ্গে চোখের এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তার সঙ্গে বার্তালাপ ইত্যাদি করো, খবরদার তপলোক ছড়ে কোথাও যাবে না, চোখেতে ভগবত দর্শন হয় না, বৈষ্ণব দর্শন হয় না, আত্ম দর্শন হয় না, এই সব শাস্ত্রেতে বলছে অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর, প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কিরকম তাকে দর্শন করে যাবে, অতএব তুমি তপলোক ছড়ে যেও না, এইখানেতে ধ্যান লাগাও চিত্তেতে আর লাগিয়ে মনেতে তাহার দর্শন কর, এইটা চোখের দ্বারা দর্শন হয়। তুমি যে প্রভু আপনি যা বলছেন কিন্তু আমার মন যে মানে না, আমি কি করি, আমি এখানে থাকতে পারছি না। তিনি বলিয়ে দেখ তুই আমার, আমি তোমাকে বারবার বলছি মনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, মন যদিও প্রাকৃত তথাপি মনের মধ্যে একটা রাবার মতন বড়বার আর কমবার তাহার মধ্যে একটা শক্তি আছে, তার উপরে ওই আত্মতত্ত্ব রিফ্লেকশন করতে পারে, বিষয়ে ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, তারপরে
কবে হাম হে রস বৃন্দব,
আরে মনটা শুদ্ধ হলে তো তোরটা কাজ হয়ে যাবে। তো তুমি যে মনে করছো যে মনে এই চক্ষু দ্বারা যে আমি দেখছি, আখ দ্বারা হম যে দেখ রহে হ্যায়, আখ কে দ্বারা ভগবান কা দর্শন নহীঁ হোতা, তুমি চিজ কো ছোড় দো, মন মে কুছ শক্তি হ্যায়, ক্যোঁকি ইসকো চেতন আভাস ভি কহীঁ কহীঁ পর কাহা গিয়া চিত্ত কো, ইসলিয়ে চিত্ত নির্মল হোনে পর তোমারা কল্যাণ হো জায়েগা, ইসলিয়ে ইস স্থান কো মত যাও। উনোনে কাহা যে ধ্রুব প্রহ্লাদ ইত্যাদি থে ইন লোগোনে তো প্রভু সে বাতচিত কিয়া আর আঁখ সে দেখা, আরে ও বিশেষ স্থিতি মে কহীঁ হো জাতা হ্যায়, সব সময় এসা নহীঁ হোতা হ্যায়, ভগবান কি বিশেষ কৃপা হোনে সে আঁখ সে উনকো দেখ সকতে হ্যায়, ইয়ে ভগবান কি বিশেষ কৃপা, বিরলে কোই এসা দর্শন কর সকতা হ্যায়, ইসলিয়ে সমাধিস্থ হো আর সমাধিস্থ হো করকে উনকো অণু অণু পরমাণু মে সর্বত্র তুম দেখ সকতে হো। আরে মহাভাগবত তো ইয়েই হ্যায় না, ইয়ে নবযোগেন্দ্র মহাভাগবত হ্যায়, প্রহ্লাদ মহারাজ জি মে মা মহাভাগবত হ্যায়, ও ক্যা দেখতে থে, সব মে আপনে প্রভু কো দেখতে থে আর প্রভু মে সব কো দেখতে থে, তো এসা তুম নহীঁ করকে তপলোক কো ছোড় করকে জায়েগা কাহাঁ জায়েগা, ইয়েই পর করকে তু ভজন করো, সমাধিস্থ হো করকে ভগবান কো সর্বত্র দর্শন করো। প্রভু আপ কহতে হ্যায় বাত ঠিক হ্যায় কি হামারা মন নেই মানতা, হম ক্যা করেন, जैसे आंख कान नाक इत्यादि प्राकृत है, मन भी तो वैसा ही प्राकृत है, मन कौन अप्राकृत है, तो यदि प्रभु की कृपा होगी मन में आविर्भूत होंगे तो क्यों नहीं हमारे आंखों के सामने होंगे, तब उनसे हम उनको दर्शन कर सकेंगे, उनसे बात कर सकेंगे, उनसे खेलेंगे धुलेंगे, इसलिए प्रभु हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम तो जाएंगे। अरे देख बार बार महाराज जी कितनी तरह की युक्ति देते हैं, ये इनकी अपनी युक्ति क्या, ये तो हमारे नव जोगेंद्र इत्यादि की तो युक्तियां है ना शास्त्र में भी, अतः कृष्णाम आदि न भवित राज्य मंदिर इत्यादि कहा गया, इसलिए सब प्रकार से वो बोध देने की चेष्टा करते हैं। कहते हैं यदि ऐसा मालूम होता है कि प्रत्यक्ष बातचीत करने में आनंद होगा, यह गलत है। आंखों में आनंद नहीं है, हाथ में कृष्ण से आलिंगन किया इसमें आनंद नहीं है, आनंद है कहां से आता है, मन से। आंख है देखती है, हाथ पैर चलते हैं, किंतु मन न रहे तो देखेगी कि नहीं, देख तो लेगी किंतु मन नहीं है तो उस चीज को नहीं देखेगी। बाजा बजता हुआ खूब जोर से चला जा रहा है, सामने से प्रोसेशन चला जा रहा है और मन नहीं है तो बोले भाई क्या हुआ, यहां से बाजा बजता हुआ गया देखा, हाँ तो नहीं हमने तो नहीं देखा। ये उद्धव संदेह संवाद में ऐसा लिखा गया है, एक बाण बनाने वाला था लोहा, वो बाण बना रहा और ऐसा तन्मय हो गया कि बाजा बजता हुआ प्रोसेशन वहां से चला गया, तो किसी ने आकर के पूछा कि अरे भाई ये प्रोसेशन में देखो कितने आदमी थे, प्रोसेशन कहां प्रोसेशन, हमने तो नहीं देखा, मन उसका नहीं था नहीं देखा। इसलिए मन नहीं रहने से इंद्रियां नहीं दे सकती, इसलिए आनंद भी मन में है, इंद्रियों में आंखों में है नहीं, इसलिए तुम मन में ही भगवान का दर्शन करने की चेष्टा करो। समाप्ति तो आंख से देखने की खबरदार चेष्टा मत करो, कैन यू नॉट, बोलिए अरे कहाँ गया वो है? ये कौन रखता है, कौन तो दे देना चाहिए ना,
वंदना करते आग बंद कर,
Maharaj is raising very interesting issue, not only important, very interesting issue. He is taking example from Brihad Bhagavata Mantra of Gokumar. When Gokumar reached a place abode that is called Tapalok, there very exalted sages are living, Navayogendra sages, they live there. So there is discussion between Piplayan Rishi and Gokumar. Gokumar went there, he stayed there for some time, then he wanted to leave that place. And Piplayan Rishi asked, why do you want to leave this highly advanced abode, Tapalok? He said, well, in your this abode, Tapalok, that is abode of austerity, I am feeling one likeness. I want to see Lord by my these eyes. But here, whatever we are performing, there is no any possibility to see Lord through eyes. Because here the emphasizing is on performing austerity and try to purify your heart and manifest Lord in your heart. But I want to see from my eyes directly. So, if Lion Rishi said, oh, you want to see directly from this eyes, it is not possible. Why? Because eyes are material. They are made of material elements. How is it possible to see through these eyes? Then Gopumar said, whatever you say may be correct, but what can I do? My mind is not ready for it. I am having pricking from my mind that I want to see from this eyes only. Look, Dhruv Maharaj sir, Prahlad Maharaj sir. Maharaj is also quoting Pujipa Sri Vikram Maharaj that he is also saying this thing, and these are the quotations from scripture that we cannot see from our material eyes. It is not possible. The transcendental thing cannot be precipitated on non-transcendental thing. So these eyes are not transcendental and we cannot obtain and see him from this, from our eyes. So Pipalaya Rishi is saying that you should try to meditate upon and you will see in your heart. Then Gopumar said, Maharaj, when you are saying that we can see it in our mind, in our heart, but this mind is also material, how is the difference? I want to see from the eyes, these eyes are material, and you are saying that you should cleanse your heart and see in your mind. Mind is also material. So both are material, then why not I should see Lord from my eyes? So, Maharaj is explaining very nicely that
Pipalani is telling, I am not.
But you are explaining.
I am the referring only.
Important point is this. Pipalani Rishi is saying, of course, apparently mind is also material, and eyes are also material, but we should note one thing, that from where the enjoyment comes, is it the eyes which enjoy, or it is the senses, or do they enjoy? Eyes, hands, these things don't enjoy. Enjoyment emerges from heart and mind. If your mind is not somewhere, you cannot enjoy that thing. There is an example in Srimad Bhagavatam in Udhav Sambhad that there was an iron man, blacksmith. He was working very attentively. He was making probably some arrow and bow, and he was so much absorbed that a very big procession passed by him. And when he was asked that how long this procession was, how many people were in that procession, he asked, which procession? That means he could not notice that procession itself. So it is not the eyes which see, it is not the ears which hear, it is the mind which enjoys and which sees and which listens and which does the activity. If mind is not there, you will not enjoy anything. So we have to manifest Lord in our mind.
प्लान भी सिखा रहे हैं. अरे देखो, पागल मत हो, उतावला मत हो. अरे ब्रह्मा जी आंख से भगवान को नहीं देखा, मन में समाधिस्थ हुए और भगवान वहां पर स्फूर्ति हुए और समाधि में भी बातचीत हो गई. जब समाधि में बातचीत हो गई है तो फिर आंख से देख करके साक्षात रूप में तुम बातचीत करना क्यों चाहते हो? वो समाधि में सब कुछ हो जाता है, इसलिए आंख से देखने की चेष्टा मत करो. हाथों से उनसे खेलोगे, उनसे और करोगे, ये सब संभव प्राकृत इंद्रिय के द्वारा संभव नहीं है. मन में कुछ कुछ शक्ति है. उन्होंने प्रश्न किया जो तत्व प्रहलाद महाराज जी ने और ध्रुव जी ने कैसे देखा, अरे देखा वो आंख से नहीं देखा, उसने समझा कि आंख से देख रहे हैं, अरे उन्होंने मन ही मन में देखा और मन से अनुभव किया, किंतु समझ रहे थे कि हमने आंख से देखा, आंख से देखा जाता है ये संभव पर नहीं। तो उनके हृदय में पूछा आप गो कुमार ने जो उनके हृदय में भगवान कैसे स्फूर्ति हुए, तो उन्होंने प्रार्थना की और भगवान कृपा करके उनके हृदय में स्फूर्ति हुए। तो जब ऐसी बात है तो हम भी प्रार्थना करेंगे और भगवान जी कृपालु होकर के हमको आंख से ही दर्शन दे देंगे, इसमें हर्ज क्या है। यदि भगवान कृपा करके मन में दर्शन दे सकते हैं तो क्यों नहीं हमारे सामने हमारी प्रार्थना से वो हमको आंखों में दर्शन दे करके क्यों नहीं हमारे साथ में चल सकते। तो तू बड़ा जीती आदमी है, हमारी बात तू नहीं सुनता है, बार बार तुम कौन कह रहे हैं। जैसे भाई मन से नहीं, मन ही से होता है, आंख नहीं देखती है। अब तो यदि ध्रुव ने देखा तो हम जीव, वो भी तो जीव थे, तो उन्होंने देख लिया भगवान की कृपा से, तो भगवान और गुरुदेव हमारे पर में क्यों नहीं कृपा करेंगे। प्रहलाद में भी कुछ कामना थी, निष्काम तो थे नहीं, तो हमें में भी यदि कुछ बुराई है, कुछ कमी है, तो भगवान यदि कृपा कर देंगे, है तो कोई दयालु है और भगवान भी है गुरुदेव भी है, तो क्यों नहीं करेंगे। भाई हम तो लोक में नहीं रहेंगे, हम तो देखो हमारी बात नहीं सुनता है तो तुमको कष्ट भोगना पड़ेगा, तो जो प्रभु की इच्छा होगी वही हम देख लेंगे, हमारा मन ही नहीं मानता है, हम क्या करें, आंखों से दर्शन करना हम चाहते हैं। पिपलायन ऋषि और बहुत तरह की बातें उन्होंने बताई, बहुत तत्व ज्ञान उपदेश किया, जो श्रीमद् भागवत में नारद जी ने वसुदेव जी से जितने भी उपदेश कहे थे सारे उपदेश कहे, दत्तात्रेय जी ने जो कहा था 24 गुरु के संबंध में वो सारे उनको बताए। कहे प्रभु ये हमारे मन में ठहरता नहीं है, मैं क्या करूं, हम दुर्भाग्य हैं, आप कृपा करें जो मैं किसी दिन समझूं। तो अभी तो हम ओ बाल गोपाल को सदा में मनस्या भी रास्ताम की मन नहीं, हमारे मन में ठहरता नहीं, पीछे ये बतलाएंगे। भाई पिपलायन ऋषि ये बार बार कह रहे हैं, अंत में भी उन्होंने और से भी बहुत युक्तियां कही, तो इतना भी समय नहीं है, हम संक्षेप में इन युक्तियों को मैंने बतलाया। अतएव इसमें पिछले उछले साल में बहुत काफी लंबा चौड़ा हमने बतलाया, किंतु सार इसका यही है, गोप कुमार माना नहीं, वो वहां से कहां गया, ब्रह्मलोक में गया, वहां पे भी मन नहीं लगा, ब्रह्मा की बात नहीं माना, सातों आठों आवरणों में मोहिनी के पास भी गए, मोहिनी जी बड़ा सुंदर रूप दिखला करके उसको आकर्षण
वहां नहीं कर सकी,
शिव लोक में गए, वैकुंठ लोक में गए, राम लोक में गए, अयोध्या में गए, फिर वहां से द्वारका में गए, मथुरा में गए, कहीं मन नहीं, और अंत में क्या किया, कृष्ण को देखा, भगवान की कृपा से आलिंगन किया, कृष्ण उसके सिर पर हाथ दे दिए, गुरु जी ने उनके ऊपर में कृपा करके हाथ दिया और वो एकदम सर 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 करता हुआ गुरु वैकुंठ वृंदावन में पहुंच गया। आत्मा में भी आंख होती है, आत्मा में भी हाथ होता है, आत्मा में सारी इंद्रियां होती हैं, आत्मा में बुद्धि विवेक सब कुछ होता है, उसमें अहंकार भी होता है। इसलिए ये यदि ऐसी किसी को उत्कंठा हो जो ऐसा ही करेंगे, हम ब्रज में जाएंगे और गोप गोपियों जैसे कृष्ण की हम सेवा करेंगे तो उसकी इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं होगी, जरूर होगी। यदि गुरु कृपा ऐसे करते हैं तो वैसे भी कृपा कर सकते हैं, यदि ऐसी किसी की लालसा हो। इसलिए गोप कुमार उनकी बात नहीं माना, अंत में उनके हाथ से निकल गए। इस तरह से फिर ये जो कुबेर आत्मजौ बद्ध मूर्तई वजद्वत त्वया मोचितो भक्ति भाजौ कृतौ च तथा
प्रेम भक्ति
तथा प्रेम भक्ति
सकां
मे प्रयच्छ उसमें किसमें है? ओ गृहणे समामप्य एतक्षि दृश्य। अब इसके आगे श्लोक में नमो देव दामोदरान इसमें आएगा, कुछ काफी बढ़ किंतु पिपलायन जो कह रहे हैं महाराज जी बार बार जो कह रहे हैं बार अपने स्थान पर ठीक है, ये गलत नहीं है। इन आंखों से प्राकृत आंखों से दर्शन नहीं होता है, किंतु ब्रजवासियों की अनुगत्य में रूप गोस्वामी के अनुगत्य में उनके दर्शन में भजन करते 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 अभी कल हमने शाम के प्रवचन में बताया जी कैसे शुद्ध सत्य हृदय में प्रवेश होता है और उसकी उसका अधिकार भेद से गोपी शरीर तक भी उसको कैसे प्रेम व्यवस्था में प्राप्त हो जाती है और कैसे कृष्ण को दर्शन करता है और कैसे उनकी सेवा करता है, ये सबको हमने कल अपने उसमें बताया। बोलिए
very quickly, with a voice, sir, he went to eternal abode, goal of Vrindavan. There he saw Krishna and Krishna as his friend. He embraced Krishna and there he found himself totally in his intrinsic
position.
Satisfied and fully satisfied, Maharaj is explaining. He is saying, So,
Maharaj
said that important thing is this. Yesterday night also in Satsang we have, Maharaj has explained it, that soul, the internal constitutional position of every living entity is there. Each and every living entity which is called soul has its own eye, has its own senses, has its hands, has its mind, has its ego. Everything is in it. If someone is really curious and eager to obtain it, to realize it, he prays, he does bhajan accordingly, he will receive it. How will he receive? He will pray to associates of Braj. Then by their mercy, the essence of Samvit and Aladani will fall on his heart. That will, he will get induction from them, which is called their mercy. Then he will get his own spiritual body developed. Through that spiritual body, he will be able to see Krishna, to talk with Krishna, to play with Krishna. So, the important point here is that how much curious and desirous one is and whom he is following. If he is following a breath associate, then his intrinsic body will automatically manifest. Maharaj is also explaining yesterday the statement that each and every living entity has got different.
হরে কৃষ্ণ। গুরু বৈষ্ণবগণের কৃপাতে আমরা যেখানে এসে উপস্থিত হয়েছি এই স্থানের নাম নারায়ণ সরোবর। এখানে আমরা সব আচমন করে এখানে উপস্থিত হয়েছি কৃষ্ণ বসন্তকালীন রাসলীলায় রাস করতে করতে তিনি অন্তর্ধান হয়ে যান। তিনি পরীক্ষা করতে যাচ্ছিলেন গোপীগণের প্রীতি কত ওনার প্রতি আছে। তিনি অন্তর্ধান হয়ে তিনি চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে এখানে অবতীর্ণ হন। গোপীগণ কৃষ্ণকে খুঁজতে খুঁজতে যখন এখানে আসেন তখন দেখেন চতুর্ভুজ নারায়ণ। তারা ওখানে চতুর্ভুজ নারায়ণকে বামে রেখে হাত জুড়ে প্রণাম করে বললেন, হে নারায়ণ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন, যেন শ্যামসুন্দর বা আমাদের দর্শন হয়, শ্যামসুন্দর যেন আমাদের আমরা যেন শ্যামসুন্দর খুঁজে পাই। আস্তে আস্তে তারা যখন আরো আগে বেরিয়ে আগে চলে গেছেন, কিছুক্ষণ পরে শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানি আসছেন ললিতা বিশাখ আদি সখীগণের সহিত। শ্রীমতী রাধা ঠাকুরের অঙ্গগন্ধ পেয়েই কৃষ্ণচন্দ্র নিজেকে চেক করতে পারলেন না। অঙ্গগন্ধ পেয়ে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি ভুলে গেলেন তার ঐশ্বর্য। তিনি ভুলে গেলেন যে আমি চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে এখানে আছি। রাধারানী অঙ্গগন্ধ রাধারানী যত নিকট আসছেন তিনি আর ঠিক থাকতে পারছেন না। তার দুই হাত নিজের পেটের মধ্যে চলে যায় অথবা দুই হাত অন্তর্ধান হয়ে যায়। এই পেটের মধ্যে চলে যাওয়ার জন্য স্থানের নাম হয় পেট, অর্থাৎ ভিতরে চলে যাওয়া।
আর নারায়ণ এখানে প্রকটিত হয়েছিলেন এই জন্য এর নাম হচ্ছে নারায়ণ।
আর নারায়ণ এখানে প্রকটিত হওয়ার জন্য এখানে নাম নারায়ণ কুণ্ড। শ্রীমতী রাধা ঠাকুরকে দেখেই কৃষ্ণ তিনি বলছেন আমায় ক্ষমা করো। শ্রীমতী রাধা ঠাকুর দেখলেন, অহো আমাকে ছলনা করার জন্য তুমি চতুর্ভুজ রূপ হয়েছিলে। তিনি মান করলেন। এখানে পাশেই ছিল পাশের গ্রামে এঠা কদম্ব, অর্থাৎ এঠা অর্থাৎ অত্যন্ত মানবতী। শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানি মান করেন কৃষ্ণ গিয়ে তাকে ছমা টমা মেঘে আবার তাকে মানিয়ে আবার সবাই একসঙ্গে মিলিত হন। এখন আমরা যেখানে চতুর্ভুজ নারায়ণ আছেন, কৃষ্ণ চতুর্ভুজ রূপে আছেন, ওখানে পরিক্রমা করে ওখানে দর্শন করব, আর ওখানে হরি কথা হবে। হরে
কৃষ্ণ।
বাসন্তী রাজ করতে করতে রাধারানী মাত করে চলে আসেন, তিনি চেরা হয়ে যান, অর্থাৎ মালিনী হয়ে যান। তখন কৃষ্ণ গোপীগণকে পরীক্ষা করবার জন্য তিনি এই স্থানে আসেন, আর এসে তিনি বনের মধ্যে লুকিয়ে যান। তো এই স্থানেতে লুকিয়ে যান, গোপীগণ যখন খুঁজতে খুঁজতে আসেন তখন গোপীগণকে পরীক্ষা চলবার জন্য তিনি নারায়ণ স্বরূপ ধারণ করেন, চতুর্ভুজ রূপ প্রকাশ করলেন। গোপীগণ খুঁজতে খুঁজতে বনের মধ্যে প্রবেশ করেছেন, তাহারা ভাবছেন নিশ্চিত রূপে এই বনের মধ্যে হবে। যখন ভিতরে প্রবেশ করে দেখলেন কি ইনি কৃষ্ণ তো নন, ইনি তো চতুর্ভুজ নারায়ণ, আমরা যাহাদের পূজা যে স্বরূপে পূজা করি সেই নারায়ণ স্বরূপ। তখন তাহাকে প্রণাম করে বললেন, হে নারায়ণ, হে দেব, হে প্রভু, আমাদের যেন কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়, আমরা কৃষ্ণকেই চাই। এই বলে গোপীগণ একটু এগিয়ে গেছেন। সেই সময় এখন কৃষ্ণ হাসতে লাগলেন যে আমাকে এরা চিনতে পারে নাই, তো এই বলে তিনি হাসছেন। এমন সময় রাধারানী আসছেন, যেমনি আসছেন তাহার অঙ্গগন্ধ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণের আর ঐশ্বর্য প্রকাশ থাকলো না, তার দুইটি হাত শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে গেল। সেই জন্য তাহার নাম হলো প্যাট, প্যাট মানে প্রবেশ করে
যাওয়া।
তো তাহার অঙ্গেতে দুইটি হাত প্রবেশ করে যায়,
ভুলে গেলেন মানে
তিনি ঐশ্বর্য ভুলে গেলেন। সেই থেকে রাধারানী এসে দেখেন কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছে, তখন ধরে ফেললেন তাকে। তো এইভাবে রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণের এবং কৃষ্ণ রাধারানীর উৎকর্ষকে প্রকাশ করলেন। শ্রী রূপ গোস্বামী পাদ দেখিয়েছেন শ্রী উজ্জ্বলিনমণিতে কি ব্রজগোপীগণ, বিশেষ করে তাহার মধ্যে বৃষভানন্দিনী শ্রী রাধা, তাহারা যে পতিব্রতা শিরোমণি, তাহারা নারায়ণ স্বরূপকে দেখেও মুগ্ধ হন না। অরুন্ধতী অনসুয়া আদি পতিব্রতা গণ আছেন, কিন্তু যদি কখনো নারায়ণকে দেখেন নিজেদের পতিকে ভুলে যাবেন তারা। কিন্তু ব্রজগোপীগণ একমাত্র কৃষ্ণ নিষ্ঠ ছিলেন, কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কাউকে জানতেন না, এই জন্য তাহারা পতিব্রতা ছিল। আর কৃষ্ণ যত প্রাণ, কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোন স্বরূপের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ ছিল। যেহেতু ব্রজগোপীগণ তাহারা রাধারানীর সঙ্গে আছেন, বৃষভানুনন্দিনী শ্রী রাধারানী তিনি মহাভাবময়ী, অতএব মহাভাবের স্বাম নেই।
What makes him?
Now, at first we do Ashman in Narayan Sarovar.
At first we saw Narayan Sarovar there, Narayan. There Narayan appeared, Krishna appeared like
Krishna no. appeared like in the Narayan. like Narayan. Srila Ravindra Krishna Prabhu and Swarnanda Prabhu explained everything. I saying very subtly, once time in the Vasantik residence, and Krishna disappeared from the residence. And then all the... Then all gopis, they are also searching to Krishna. Where Violet, where is my beloved friend Krishna? All the gopis, they are also searching here in Krishna. Then Krishna is joking, and one kunja, he folded four-handed. Sankha Chakra Gadabhuna, that is called the shape of Narayan. Some gopis, they also coming and doing pranam and saying, oh, he is not my beloved friend Krishna, he is Narayan, he is our...
He did pranam and passed away.
And then Srimati Radhika, Lalita, Vishaka and other gopis, they also coming. When only the Srila Krishnadas Kaviraj explaining Chaitanya Charitamrita, only the smelling of Srimati Radhika's
smell.
Sri Krishna, he could not
forget himself,
I am Narayan, and he could not manifest it of his opulence. That is called the form of Narayan. Why? Srila Krishnadas Kaviraj explained, where there is Srimati Radhika and this is the gopis. Krishna never manifested of his opulence. Because Srimati Radhika, her bhav is called the Mahabhav. Where there is a Mahabhav, there Krishna Chandra never manifested of his opulence. All his Krishna, all his body automatically melted and all of his arms, four arms enter in his
not two arms.
Only two arms enter in his body. That is called the Mahasri. That is called Paitha. And Swananda Prabhu also explained, this is the high level of the plane. Sneha Man Pranay Rag Unrag Bhav Mahabhav. Swananda Prabhu explained, Ujjal Ilmani, what is called the Rag? At the time of Rag, what is called the Rag?
यह स्थान हमारे गौड़ीय वैष्णवों का समस्त संप्रदायों से श्रेष्ठ है. पहला कि कृष्ण ने यहाँ पर चतुर्भुज रूप धारण किया. कृष्ण अपेयर्ड हिज 400 स्वरूप हियर. But any gopi were not attracted by that group. Any of the, what to tell Radhika and Chandravali and others. But when Lakshmi sees Krishna, they are charmed and they give up their chest and everything. Unka patiprat dham chhod jata hai. Kintu Radhika aur gopiyan नारायण को देख करके आकर्षित नहीं होती, उसको प्रणाम करके और बस चली जाती है, उपेक्षा कर देती है. यदि होगा तो उनसे यही मांगेगी कि आप प्रसन्न है तो कृष्ण हमारे हमको मिल जाए. नथिंग एल्स. इफ दे विल सी कृष्ण चतुर्भुज नारायण, दे विल टेल ओ यू आर गॉड ऑफ गॉड, सो प्लीज बी मर्सीफुल दैट वी कैन हैव कृष्ण, वी कैन मीट कृष्ण. Nothing else. But if Lakshmi anyhow takes darshan of Krishna, his tenseness goes away. And once he like to meet with Krishna, Krishna se milna chahti hai ye sab. Isliye gopiyon ka mahatma, gopiyan bahut Lakshmi se bhi adhik pativrata hai. और गोपियां यहाँ कृष्ण को देख करके बस चली गई और उनसे कहा जी यदि आप प्रसन्न हैं तो कृष्ण मिल जाए, और राधिका आई तो राधिका को देखने से ही उनके गंध से ही कृष्ण अपने को भूल गए, उनका ऐश्वर्य भूल गया, अपने आप उनका दो हाथ न जाने कहाँ चला गया भीतर के अंदर, इसलिए इसको बैठा कहते हैं। इसलिए एक ये विषय है कि जितना गोपियां हैं उन सब गोपियों में भी प्रधान कौन है, और गोपियों को देख करके कृष्ण नारायण का नारायण बने रहे, किंतु राधिका जी के देखने से ही उनका चतुर्भुज नारायण का स्वरूप चला गया। यहाँ पर राधिका जी का सबसे श्रेष्ठत्व अथवा श्रेष्ठ महत्व है, इसलिए इस नाम इस गांव का नाम बैठा है। नारायण स्वरूप में यहाँ है किंतु राधिका जी को देख करके बस वो भूल गए, चतुर्भुज बन गए। यहाँ पर एक गाँव में हम लोगों ने आज से 30 वर्ष पहले एक पेड़ देखा था कदम्ब का, उस कदम्ब का पेड़ का नाम था ऐठा कदम्ब। कदम्ब राधा जी हैं और तमाल कृष्ण है, इसलिए कदम्ब ऐठा है तो कौन ऐठा, राधा जी ऐठ गई माने मानवती हो गई, ऐसे ऐठ गई ऐसे वक्र हो गई जो कृष्ण को मनाने में बहुत समय लग गया। अभी तक वो पेड़ था जिसके